नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमः। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशकाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
प्रथम दीक्षा में भगवान का नाम लेने के लिए गुरुद्वारा मंजूरी प्राप्त होती है और संबंध और अभिधेय दोनों प्रस्तावित करते हैं। संबंध ज्ञान और संबंध जगाने के लिए भगवान का नाम या के नाम की सेवा ही एकमात्र हमारा मूल आधार भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए बनता है। अवश्य ये भक्ति में प्रगति हो इसलिए बहुत सारी बातें सावधानी से समझनी चाहिए। जो लोग दूसरी दीक्षा लेते हैं तो ये संबंध में यदि कोई कमियां रह गई हैं या अपनी जो भगवान के प्रति की सेवा की कार्यवाही जिसे अभिधेय कहते हैं उसमें या कुछ कमजोरियां हैं तो वो दूर करने के लिए पुनः भगवान की समक्ष, अग्नि की समक्ष, भक्तों की समक्ष, गुरुजनों की समक्ष हम वही प्राण यहाँ शपथ लेते हैं जो हमने पहली दीक्षा में दिया था। तो अवश्य भक्ति की प्रगति के लिए हमें भक्ति के मार्ग में बाधा कराने वाली जो सारी हकीकत है जो हरेक के जीवन में ये समस्याएं के रूप में खड़ी रहती हैं उनको समझने के लिए एक मार्गदर्शन जो बहुत आध्यात्मिक दृष्टि से नापा तोला गया है वो भगवान नाम में होने वाले 10 अपराधों पर आधारित है। सर्वप्रथम अपराध भगवान नाम के प्रचार करने वाले महाभक्तों की निंदा करना। ये अपराध मामूली अपराध नहीं, यह अपराध सर्वाधिक भक्ति का नाश करने वाला अपराध है। यदि इसमें हमारी कोई शरत भूलचुक हुई हो तो तुरंत एक अपराधी की तरह अपने को मान लेना चाहिए और जिनका अपराध किया है उनकी तुरंत क्षमा मांगने की तैयारी रखनी चाहिए। कभी कभी पुरानी आदत होती है कुछ न कुछ कह देने की, तो यदि हमारी जीत में ये जो वेग की आदत बन गई है, जीत का वेग ऐसा है जो हृदय स्पर्शी बन जाता है, तो जब भगवान के नाम का प्रचार करने वाले की निंदा करते हैं तो ये निंदा सीधी हृदय में पहुंच जाती है और ये भक्त का अनादर होता है। तब भगवान नाम स्वयं अपने आप पर अपराध ले लेते हैं, भगवान बाद में लेते हैं, लेकिन सर्वप्रथम वो भक्त जिसने अपराध किया है उसकी सारी प्रगति वहीं के वहीं जम करके ठप हो जाएगी। भगवान बाद में उसकी खैर नहीं छोड़ेगा।
तो इतना सावधान हमें रहने की आवश्यकता है। इसका कारण शास्त्र में ये बताया गया है कि भगवान का भक्त जो भगवान का प्रचार करने वाला है वो भगवान का अति प्रिय करने वाला है। न चतस्मात् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतम्। कौन? यह इदं गुह्यं परमं मद्भक्तेश्वरि दास्यति। तब भक्तों भक्तों के बीच में जब भक्ति की प्रगति का ही एकमात्र संग करने की आवश्यकता बताई गई है तो इसमें भक्ति की प्रगति को तुरंत रोकने वाला यह महाअपराध अपराध की खेत नहीं छोड़ता। भक्तों के बीच में भक्ति बढ़ाने के लिए भगवान का अति गुह्यतम ज्ञान की हमेशा चर्चा होती रहती है। इसलिए भक्तों भक्तों के बीच में गुह्यम पृच्छति आख्या व्यवहार, तो उसमें गुह्यता की तो बात ही कहीं नहीं, बल्कि हम उस पर भारी अवरोध लाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा भगवान के भक्त जो भगवान के नाम के प्रचार में जुटे हुए हैं, इनका कभी अपराध करने का सोचना भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं सोचना। हाँ, दूसरा अपराध बताया गया है कि शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नामों को भगवान विष्णु के नाम से स्वतंत्र या बराबर समझना। भगवान एक ही होते हैं, भगवान की भगवत्ता इनके विस्तारों में समाई होती है, लेकिन ये भगवत्ता कम मात्रा में इनके विस्तारों में मिलती है। तो भगवत्ता न समझ करके हरेक भगवान है ऐसा मानना और उसमें भी जीव तत्व जो विष्णु तत्व से अलग है इनका अंश मात्र बताया गया है, तो अंश और अंशी की बराबरी तुलना करना या अंश अंशी से भिन्न है ऐसी गिनती करना या कल्पना करना वो भी भगवान के नाम पर अपराध। यानी कि सभी नाम एक नहीं, और मंत्रों में भी सभी नाम यदि भगवान के होते हुए भी शास्त्रकार ये नामों के प्रति कहते हैं मुख्य नाम भगवान का और होता है, गौण नाम बहुत होते हैं। हरिदास ठाकुर के अनुसार भगवान के मुख्य नाम वृंदावन की लीलाओं में उनके अंतरंग भक्त जो है उनके संबंध में ये लीला नाम मुख्य नाम का है। इसमें कृष्ण राम मुख्य आते हैं। गौण नाम सारी भौतिक सृष्टि के सृजन में भगवान के अंशावतार पुरुषावतार इत्यादियों ने जो योगदान दिया है उसके संबंध में ये सारे नाम जहां तक भौतिक अवस्था है वहां तक ही उनको लागू होता है, लेकिन वो सर्वे सर्वा नहीं है, तो उसकी भी काफी विश्लेषण रूपी सारी चर्चाएं हमें शास्त्रकार की मदद से हमें प्राप्त होती है। तो जब देवता आदि जब भगवान के रूपांतरित अवतार शिव जी और ब्रह्मा प्रथम जीव इनकी तुलना भगवान के मूल स्वरूप या इनके नाम के साथ भी यदि हम करें तो अपराध बन जाता है। उसके उपरांत वो स्वतंत्र तो है ही नहीं, क्योंकि भगवान सारी सृष्टि का सृजन का हेतु है, टिकाने का भी वही कारण है और नाश करने का भी वही कारण है। लेकिन इनके अंशावतार या रूपांतर और जीव, इनको ये विशिष्ट कार्यों के लिए यदि सौंपा जाता है तो इनको भगवान के नाम की तुलना में नहीं रखना चाहिए, इनमें तो इनको स्वतंत्र मानना चाहिए। सभी जो कुछ है भगवान के साथ संबंध में, इसलिए जो नाम हमें यहां प्राप्त हो रहा है और नाम की महत्ता बहुत उत्तम है। वैसे बहुत सारे लोग बहुत प्रकार के मंत्र जो शास्त्र में सूचित नहीं किए गए हैं और इस कलयुग के लिए खास करके भवसागर पार करने के लिए नहीं दिए गए हैं, और वही मंत्र यदि आपको भगवत प्रेम की प्राप्ति जो अंतिम प्रयोजन है उस पर पहुंचाने वाले की सक्षमता बताता है, उसकी तुलना में बहुत सारे मंत्र देते हैं तो उसकी गणना भी हमें यहां नहीं करनी, क्योंकि ये अपनी गुरु शिष्य परंपरा में यह महामोला महामंत्र हमें प्राप्त होता है और ये परंपरा की मूल जो धरोहर हैं, जो अस्खलित रूप से हमें प्राप्त होती है, तो वही आप सबको प्रदान करने के लिए यहाँ प्रयत्न हो रहे हैं। तो उसमें गैर समझ ना समझ हम न रहें कि ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम् नाम नाम कलिकल्मषनाशनम् परतर उपाय सर्ववेदेषु न दृश्यते करके जब हमें ब्रह्मा जी नारद मुनि के द्वारा हमें बताते हैं तो वो क्या कोई सामान्य चीज है? कहीं नहीं दूसरे मंत्रों के लिए ऐसा लिखा है, तो अवश्य देवताओं के नामों को बीच में क्यों लाना? तो ये अपराध यदि हम नहीं समझ पाते हैं तो मायावादी बन जाने की भी बहुत संभावना बनी रहती है। इसीलिए बहुत सावधानी पूर्वक भगवान के नाम की महत्ता समझना हमारी फर्ज होती है, आपको समझाने की और उसी तरह आपको स्वीकार करने की। तीसरा अपराध है गुरु की अवज्ञा करना। गुरु भगवान इनके प्रतिनिधि को अपना काम करवाने के लिए तो भेजते हैं, तो जब इनकी अनुभूति के अनुसार हमें यदि समझ मिल रही है तो वो समझ अपनाने में हमें क्या परेशानी आती है? वो भगवान के संबंध में ही तो समझाएंगे, क्योंकि वो समझ के अनुसार भी हमें अनुभूति प्राप्त होगी। जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो गुरु और कृष्ण के जो सूचनाएं हैं, इनकी समझ है, वो हम यथावत स्वीकारें। यस्य देवे परा भक्ति तथा देवे यथा देवे तथा गुरु तस्य ही कथिता ही अर्थ्या प्रकाशन्ते महात्मना। जिनको अपने गुरु और कृष्ण भगवान के वचनों में पूर्ण श्रद्धा, इनको ही सारे वेदों का ज्ञान यानी कि सारी चीज जो जानने की है उसे यथावत प्राप्त करने का अधिकार मिलता है, अन्य को नहीं मिलेगा। तो ऐसा अधिकार शास्त्र बताते हैं तो वो प्राप्त करने में हमें पूर्ण तैयारी तो होनी चाहिए। तो ऐसे गुरु के वचनों की अवज्ञा करना किस पर पाप चढ़ेगा? सर्वप्रथम हरिनाम पाप ले लेता है और पाप नहीं स्वीकारता है, और यानी कि उसको भगवान के नाम के द्वारा जो सफाई होनी है, चेतो दर्पण मार्जनम होता है, वो कभी नहीं होगा। जब उसकी ही सफाई नहीं होती है तो वो आगे कैसे बढ़ सकता है? चौथा अध्याय ये अपराध है, तो वो यही समझ हमें शास्त्र द्वारा प्राप्त होती है। तो जो वैदिक शास्त्रों अथवा उनके प्रमाणों के आधार पर हमें जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व इत्यादि फिलसफे द्वारा हमें भगवान के पूर्ण चरित्र समझने के लिए हमें इतनी सारी मदद मिलती है, तो ये प्रमाणों को काल्पनिकता से हम उसकी अवगणना करके या उसका इंटरप्रिटेशन यानी कि अर्थघटन करते हैं, वो तीनों अपराध एक साथ साथ में चढ़ जाते हैं। भगवान के नाम में ये खास करके हरे कृष्ण महामंत्र का जो अर्थ है, तहसील प्रभुपाद जैसे समझाते हैं कि ये सेवा मंत्र है, राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हे माता आप जैसे भगवान की सेवा करती हैं वैसी हमें सिखाओ। गोलोक वृंदावन में जाना है तो राधा रानी ही सिखाएगी और कोई नहीं सिखा सकता, तो उनकी यानी कि सेवा की भावना से हमें ये महामंत्र स्वीकारना है, और हमेशा हम भगवान की सेवा में ऊपर उठते रहे, अपना विकास होता रहे। तो ये वैदिक शास्त्रों का निचोड़, ये सारे एक अपराध है, एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हैं, तो वो जरा संभालते हैं। हम यदि आगे बढ़ते हैं तो अवश्य भक्ति में प्रगति बनेगी। पांचवा अपराध बताया गया है, जो हमने बताया अभी, कि हरे कृष्ण महामंत्र को काल्पनिक समझना। नाम कोई काल्पनिक नहीं होता, जहां नाम और नामधारी में अंतर नहीं है वो काल्पनिक कैसे हो सकता है? उसको पुरवार करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है भगवान श्री कृष्ण उसकी जीवा पर नाचते हैं। कृष्ण डांसेस ऑन द टांग हूएवर चांस, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम अभी नामाभास की अवस्था में गुजर रहे हैं, लेकिन जब अनुभूति होती है तो प्रभुपाद जी का वचन सत्य लगेगा। यानी कि ये कोई कल्पना का विषय नहीं है, कोई काल्पनिक नहीं। हम यदि नहीं समझते तो उसके बारे में प्रश्न करें। हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य हैं, जो अनपढ़ है, फिर भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सब कुछ समझा सकते। यह हरिनाम चिंतामणि ने भगवान के नाम की महत्ता उन्होंने जैसे समझाई है, वैसी और दूसरी कोई नहीं समझ सकती। समझा भी नहीं सकता। चैतन्य महाप्रभु तो सिर्फ सुनते रहे बाहर से, लेकिन वही तो उनकी प्रेरणा थी। छठा अपराध भगवान के नाम में अर्थघटन करना आ गया। अर्थघटन कौन करता है? जो अपने अहंकार से सोचता हो भगवान के नाम पर। अहंकार तो अज्ञानता से पैदा हुआ है, लेकिन उसकी अज्ञानता यानी कि जो तामस गुण है वो उसे इतना अंधकार में रखता है कि वो हर चीजों का, भगवान के नामों का भी अर्थ करने लगता है। श्री प्रभुपाद जी भगवद गीता के प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक के बारे में काफी चर्चा करते हैं। जी जब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव, वो श्लोक की चर्चा में प्रभुपाद जी कहते हैं कि मायावादी लोग कहें कि ये शरीर धर्म क्षेत्र है और ये संग्राम जो है जीवन संग्राम, उसमें ये शरीर द्वारा ही करना है। जीवन संग्राम शरीर द्वारा ही करना है। शरीर सिर्फ शरीर अकेला है, लेकिन उसमें मन बुद्धि और अहंकार ये तो पड़े हैं। सत्य अवस्था अलग अलग शरीर से भिन्न है, कहीं सूक्ष्म है कहीं जड़ है। तो जड़ता ही हमारा सब कुछ है, ये तो बहुत गहरा अंधकार बताता है। तो वो कह रहे हैं कि ये शरीर में पांच उंगलियां जो है पांच पांडव बराबर है इत्यादि अर्थघटन कर रहे। वो अर्जुन था, कुरुक्षेत्र है, अभी भी है, इनकी कोई परवाह नहीं करते और अपनी ये दुर्बुद्धि से, जो अहंकार भरी दुर्बुद्धि से इसका अर्थघटन करने लगते हैं। तो ये भगवान के संबंध में अपराध चढ़ता है, भगवान के नाम पर अपराध चढ़ता है। सातवां अपराध है नाम के बल पर पाप करना। नाम के बल पर पाप करने की वृत्ति यदि हमारे में है तो इसका मतलब यह है कि हम नाम लेते समय बहुत सारे अनर्थों का ही चिंतन करते रहते हैं। अनर्थमम उपशमम शांता, तो भक्ति अधोक्ष अध्यक्ष भगवान यानी कि जो इंद्रियों से परे हैं, तो इनका चिंतन अनर्थ उपशमम करके ही हो सकता है। जब अनर्थ चालू रहते हैं तो जो इंद्रियातीत भगवान की हमारे अनुभूति का विषय बनता है वो कभी होगा ही नहीं। तो अनर्थ जब चालू रहते हैं तो भगवान के नाम के बल पर पाप करने की वृत्ति बनी रहती है। यानी कि हमारी श्रद्धा भी कमजोर पड़ेगी, हमारी ये जो सत्संग की जो हमारे सत्संग में जो फायदा होना चाहिए वो भी हमें नहीं प्राप्त होगा, और जो भजन क्रिया करते हैं वो भी कमजोर बनती रहेगी जब तक अनर्थ उपहार नहीं निकल। तो अनर्थ जब निकलेंगे तब भगवान की श्रद्धा दृढ़ बनेगी, उसे निष्ठा कहते हैं। निष्ठा के बाद सब भक्ति की प्रगति अपने आप होती है, लेकिन निष्ठा तक लाने के लिए हमें मेहनत करनी, वो हमारी ओर से अपने को मेहनत करनी पड़ती है। हर एक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि ये इसके बस में है, बाकी की चीज भी उसके बस में नहीं रहेगी, वो अनायास भक्ति अपने आप को ही आगे बढ़ाएगी। भक्ति देव की कृपा अनर्थ सम जाते हैं, निष्ठा जगती है, इससे जो भगवान के नाम में हमें जो रस पैदा होता है वो रुचि, बाद में आसक्ति भाव और प्रेम पर हम रागानुगा अनायास ही हृदय के भाव की उर्मियों से हम भगवान की सेवा करने लगे। लेकिन इतनी मेहनत अनर्थ निकालने के लिए तो हमें ही करनी चाहिए, उसके लिए एक दूसरे की मदद ले, वो तो सत्संग का महिमा बना रहे। आठवां अपराध है हरे कृष्णा महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित शुद्ध सकाम कर्म जिसे कर्मकांड कहते हैं, तो फल की प्राप्ति के लिए और वो भी काम चलाव के लिए हम नहीं करते। यहाँ यज्ञ विधि पांचरात्र की विधि है और भगवान का नाम जब आपको भागवत विधि से दिया जाता है तो भागवत विधि स्वयं अपने आप में भी सक्षम है। फिर भी हमारी अनादिकाल से ये सारी जड़ता पूर्वक हमने जो अहंकारों द्वारा ये अनर्थ इत्यादि वाला जीवन बनाते रहते हैं, तो उसमें हमें व्यवस्थित रूप से पांचरात्र की विधि का सम्मिलन करना पड़ता है। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला का जप का आप अभी निर्णय लोगे, वचन दोगे और उसके साथ साथ 4 नियमों का पालन करोगे, उसका भी वचन दोगे, सही ना? सबको याद रहेगा क्योंकि हम लोग पूछेंगे कि कौन कौन से 4 नियम हैं, 16 माला का जप करोगे, सारी प्रतिज्ञा ले आएंगे आपके पास। तो जैसे 4 नियमों का पालन और 16 माला, 4 नियमों का पालन हमें ये भौतिक बंधनों से छुड़ाने के लिए सक्षम है, क्योंकि भौतिक बंधन के कलयुग का प्रभाव हमें जो जितना आसानी से हमें इस दुनिया में मिल रहा है उसको निकालने के लिए आसानी तरीका 4 नियमों का पालन और कुछ नहीं। तो 4 नियमों का पालन करने में जिसकी रुचि बनी रहती है तो अवश्य मुक्ति के लिए लायक बन जाता है। प्रभुपाद जी उसे रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरेशन कहते हैं। मुक्ति के लिए 4 नियमों का पालन, लेकिन मुक्ति के बाद तो भक्ति चालू रहती है तो कौन चलाएगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अवश्य जैसे हमारे व्यवहार में यानी कि अभिधेय में 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन दोनों करते हैं, तो वो दोनों को हम दीक्षांत समय में यज्ञ आहुति में ये आप सारा अपना योगदान दे देना, एक बार दे देना, तो अवश्य ये कोई कर्मकांड नहीं है। इसके पीछे हमें कोई भौतिक संपत्ति इत्यादि की प्राप्ति होगी ऐसा सोचना का आपको मौका भी नहीं दे। यदि कोई सोचता है तो समझो वो अनर्थ बनाए रखेगा और 7वां अपराध नाम के बल पर पाप करने की चेष्टा करेगा। लेकिन ये सावधानी में 8वां भी बताया जाता है कि खबरदार ऐसा सोचना भी ठीक नहीं। 9वां अपराध है अश्रद्धालु को भगवान के नाम की महिमा का उपदेश देना। आप तो गौर कि हम सब प्रचारक हैं, सबको भगवान के नाम की महिमा तो कहते हैं, हमें क्या पता कौन अश्रद्धालु है कोई नहीं, तुरंत पता चल जाएगा। यदि अश्रद्धालु है तो आपको समझाने नहीं आएगा, नहीं तो आपसे दूर हट जाएगा। कम से कम आपको मालूम हो तब तो उसका पीछा नहीं करना चाहिए। बहुत पहुंचे हुए विशुद्ध भक्त होते हैं वही ऐसी कृपा करते हैं कि अश्रद्धालु को भी श्रद्धा पैदा करा देते हैं। लेकिन हमें ऐसा साहस नहीं करना चाहिए और अकेले अकेले उपदेश देना नहीं, कोई साथ में होना चाहिए। और तीसरी बात ये भी है कि घर और परिवार में यदि कोई विरोध करता है तो लहू के संबंध में हम ये जरा सोचें कि हम उपदेश नहीं करें, कुछ दूसरा को उनको कह दो कि जाओ आप हमारे माता पिता को समझाना, लेकिन खुद साहस नहीं कर दो, क्योंकि जो देहात्म भान है वो आगे नहीं बढ़ने देते, तो चालाकी करना। इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग अश्रद्धालु हैं, हाँ, लेकिन भक्ति के ये जो प्रामाणिक पद्धति द्वारा हमें ये मौका मिल रहा है उसको तो समझने के लिए उनके पास कोई साधन है ही नहीं, न तो इनको मदद है। तो हमें प्राहित व्यक्ति थर्ड पार्टी के द्वारा हमें ये कराना चाहिए, तो सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी। अश्रद्धालु को उपदेश करने का भगवान कहीं बताते भी नहीं, जब भक्त हृदय है उसको बताने का फायदा है। पहले बताया कि भक्तों भक्तों के बीच में भी ये भगवान की महिमा और आगे समझाने के लिए चर्चा करनी चाहिए। भगवान भगवद गीता में भक्त की ये सराहना करते हैं, जब एक दूसरे से मिलते हैं तो मेरे बाबत में है मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्तश्च परस्परम् कथयन्तश्च माम नित्यम रमन्ति च तुष्य तुष्यति च रमन्ति। भक्त इस ढंग का व्यवहार करते हैं जो मेरे बाबत में ही वो लोग चर्चा करते हैं, मेरे प्राण रहते हैं, इनका प्राण हमारे समर्पण है, समर्पित होगा, और एक दूसरे की भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए बोध करते हैं। मेरी कथा करके कथा श्रवण करके वो लोग जो संतोष पाते हैं तुष्यन्ति च और उसमें ही आनंद लेते हैं। भक्तों का और धंधा होता ही नहीं, तो इसीलिए जो अश्रद्धालु हैं वहां तो कुछ प्राप्त होगा ही, इनको उपदेश देने की आवश्यकता क्या है? लेकिन भगवान के नाम पर अपराध क्यों चढ़ता है? यदि हम जानबूझकर उसकी रगड़ करने के लिए जाते हैं तो भैया माया के हम भोग बन जाएंगे, अपराध चढ़ जाएगा। जब हरिनाम पर अपराध चढ़ता है तो हमारी ये प्रीचिंग किसी को उपदेश देने के लिए तो ये अपराध समझने की आवश्यकता बनी रहती है। दसवां अपराध है भगवान नाम की महत्ता, बहुत बार सुनने के बावजूद भी हम विषयासक्ति बनाए रखते हैं, तो यानी कि शौच कुंजरवत जैसे स्नान किया जाता है, भगवान के नाम में निर्मलता आती है, हमारी सारी जो मलिनता है चली जाती है, और निर्मल स्नान करने के बाद हाथी जैसे बाहर जाकर अपने ही शरीर पर धूलि फेंकता है, तो विषयाशक्ति ऐसी है कि वो धूलि फेंकने बराबर है, तो उसे क्या हमें फायदा होगा? और जब हम इन सारे अपराधों की चर्चा करते हैं तो एक और सूचना दी जाती है, जो सारी अपराधों की जनेता भी बन सकती है, वो है भगवान के नाम जप के समय बेध्यान रहना। अवश्य बेध्यानता, यानी कि मन तो चला ही जाएगा, मन को नियंत्रित करने के हमारे पास ताकत नहीं रहेगी, तो अवश्य बेध्यान बना तो होना ही नहीं चाहिए। नाम के जप में हमें पांच इंद्रियां संयुक्त जोड़ने के लिए हमें मौका दिया जाता है, तो वो प्रायोगिक रूप से हमें मन को नियंत्रित करवाता है। फिर भी हम बेध्यान रहे इन पांच इंद्रियों पर, उनको भगवान के नाम की सेवा का कर्तव्य न बजाने दें, तो ये अपराध बन जाए। तो इन 10 अपराध से हम हमेशा बचते रहें, कभी न हो पाए तो अवश्य अनर्थ की निवृत्ति भी हो जाएगी, निष्ठा भी पैदा हो जाएगी, और भगवान के नाम में जो रसास्वाद है, रसमूर्ति है, उसका हम अनुभव करने लगेंगे, तो अवश्य भक्ति देवी की कृपा प्राप्त होगी। तो जिसे हम भगवत धाम जानने के लिए कुछ लाइफ आर्ट बना पाएंगे, तो अवश्य ये 10 अपराध होता हर रोज आपको दोहराना भी होगा, उस पर चिंतन भी करना होगा।